एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट।
आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिनका नाम हम सबने सुना है, महात्मा गांधी।
नमस्कार। और आज हम गांधी जी को सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी या बापू के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि एक बिल्कुल अलग नजरिए से, एक बहुत ही गहरे मौलिक राजनीतिक विचारक के तौर पर।
हाँ, और इस सफर में हमारे मार्गदर्शक होंगे लॉर्ड भेखू पारेख। उनकी गांधी पर लिखी किताबों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। पारेख जी का काम इसलिए खास है क्योंकि वो गांधी को सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं देखते, वो उन्हें प्लेटो, हॉब्स, मार्क्स जैसे जो बड़े वैश्विक विचारक हैं उनकी कतार में खड़ा करते हैं।
उनके विचारों का एक कह सकते हैं फ्यूजन किया
जी,
और राजनीति नैतिकता पर एक बिल्कुल नया अनूठा नजरिया पेश किया।
एकदम। और ये आज के समय में मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। देखिए ना, आज भी दुनिया में गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पर्यावरण या फिर जो सांस्कृतिक टकराव हैं, कितनी चुनौतियां हैं।
सही बात है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या गांधी के विचार, जिन्हें पारेख इतने जोरदार तरीके से पेश करते हैं, क्या वो आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं, कोई समाधान दे सकते हैं?
तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। आज शुरुआत करते हैं लेखक से ही। ये भीखू पारेख है कौन?
जी, लॉर्ड भीखू पारेख, जैसा आपने कहा, ब्रिटेन के बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक दार्शनिक हैं। उनका खास काम मल्टीकल्चरिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद पर है। दुनिया भर में उनके काम को पहचान मिली है।
और उनकी पृष्ठभूमि भी तो काफी अनूठी है। गुजरात में जन्म, भारत में शुरुआती पढ़ाई, फिर वो ब्रिटेन चले गए उच्च शिक्षा के लिए।
हाँ, और यही बात उन्हें गांधी को समझने के लिए खास कह सकते हैं एडवांटेज देती है। वो भारतीय जड़ों की गहरी समझ रखते हैं और पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की जो बारीकियां हैं उनमें भी माहिर हैं। ये कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है।
बिल्कुल। वो कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रहे, ब्रिटिश अकेडमी के फेलो बने और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी। तभी तो उन्हें लॉर्ड पारेख कहते हैं। उनकी एक किताब है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, वो तो जैसे टेक्स्ट बुक मानी जाती है।
तो जब वो गांधी पर लिखते हैं तो वो सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को नहीं देखते, वो उनके विचारों को वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के सामने रखकर परखते हैं और ये दिखाते हैं कि गांधी कितने ओरिजिनल और वैश्विक विचारक थे।
मतलब वो गांधी को संत वाली छवि से बाहर निकालकर एक गंभीर दार्शनिक के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल। उनकी किताबें कोई बायोग्राफी नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस हैं गांधी के विचारों का, उनके दर्शन का।
अच्छा, तो पारेख की किताबों का मुख्य तर्क क्या है? वो गांधी के बारे में क्या खास बात बताना चाहते हैं?
देखिए, पारेख का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि गांधी सिर्फ एक राष्ट्रवादी नेता या कोई धार्मिक व्यक्ति भर नहीं थे, वो एक सिस्टमैटिक थिंकर थे, एक व्यवस्थित विचारक।
सिस्टमैटिक थिंकर?
हाँ, जिन्होंने उस समय की जो दो बड़ी विचारधाराएं थी, लिबरल डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, उन दोनों का एक रेडिकल, एक मौलिक विकल्प पेश किया। और ये विकल्प उन्होंने पश्चिमी और भारतीय परंपराओं के एक अनूठे सिंथेसिस, एक संगम से तैयार किया था।
और वो उन आम धारणाओं को भी चुनौती देते हैं जो गांधी के बारे में बनी हुई हैं, है ना?
बिल्कुल। जैसे कई लोग सोचते हैं कि गांधी तो जी पूरी तरह मॉडर्निटी के खिलाफ थे, एंटी मॉडर्न थे, या सिर्फ धर्म की बातें करते थे, या उनके विचारों में कोई तारतम्य नहीं था, बिखरे हुए थे।
हाँ, ये बातें सुनने को मिलती हैं।
पारेख इन सबको खारिज करते हैं। वो तर्क देते हैं कि गांधी ने पश्चिमी दर्शन से बहुत गहराई से संवाद किया, उसे समझा, परखा और भारतीय परंपराओं से भी प्रेरणा ली, लेकिन रचनात्मक ढंग से, आंख बंद करके कुछ भी स्वीकार नहीं किया, हमेशा एक क्रिटिकल नजर बनाए रखी।
तो पारेख की किताबों में गांधी के किन बड़े विचारों पर फोकस रहता है?
कई सारे हैं, जैसे आधुनिक सभ्यता की गांधी की जो तीखी आलोचना है, खासकर हिंद स्वराज में, फिर उनका वैकल्पिक विजन ग्राम स्वराज का, सत्याग्रह का उनका पूरा दर्शन, राजनीति में धर्म और नैतिकता की क्या जगह हो, उनका आर्थिक दृष्टिकोण जिसमें सर्वोदय और ट्रस्टीशिप जैसी बातें आती हैं, शिक्षा को वो कैसे देखते थे। और हाँ, पारेख ये भी दिखाते हैं कि जाति या महिलाओं के मुद्दे पर गांधी के विचार समय के साथ कैसे बदले, कैसे विकसित हुए, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं थे।
चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरे चलते हैं। गांधी के जो विचार थे ये बने कैसे? उनकी इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन पर पारेख क्या कहते हैं?
पारेख उनके शुरुआती प्रभावों को बहुत महत्व देते हैं। बचपन में माँ पुतलीबाई का गहरा धार्मिक प्रभाव, वैष्णव परंपरा थी, साथ ही जैन धर्म का असर, खासकर अहिंसा और अनेकांतवाद।
अनेकांतवाद यानी सत्य के कई पहलू होते हैं।
हाँ, कि पूरा सच किसी एक के पास नहीं होता। ये विचार गांधी जी में बहुत गहरा था। फिर ईसाई धर्म का भी प्रभाव रहा, खासकर सर्मन ऑन द माउंट, और शुरुआती दौर में पश्चिमी उदारवाद का भी।
फिर वो लंदन गए लॉ पढ़ने, वहां तो माहौल बिल्कुल अलग रहा होगा।
बिल्कुल, पश्चिमी लाइफस्टाइल, पश्चिमी विचार, उनसे सामना हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है, पारेख बताते हैं कि वही उन्होंने पहली बार भगवद गीता और बाइबल को गंभीरता से पढ़ा, मतलब पश्चिम में जाकर अपनी जड़ों की तरफ उनका ध्यान और गहरा हुआ।
लेकिन असली बदलाव तो शायद दक्षिण अफ्रीका में आया।
हाँ, पारेख मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। वहां जब उन्हें खुद नस्ली भेदभाव झेलना पड़ा, वो अंदर तक हिल गए और वहीं से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, एक व्यक्तिगत और राजनीतिक बदलाव।
और सत्याग्रह का जन्म भी वहीं हुआ।
जी हाँ, अन्याय से लड़ने का उनका जो खास तरीका था सत्याग्रह, उसका विकास वहीं हुआ। उन्होंने वहां कम्युनिटी लिविंग के प्रयोग भी किए, फीनिक्स सेटलमेंट, टोलस्टॉय फार्म। पारेख तो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका गांधी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी थी,
प्रयोगशाला,
जहां उनके सिद्धांत असल जिंदगी की कसौटी पर कसे गए।
अच्छा, अब आते हैं गांधी की उस किताब पर, हिंद स्वराज, और उनकी आधुनिक सभ्यता की आलोचना पर। पारेख इसे कैसे देखते हैं?
पारेख बताते हैं कि गांधी का मूल ऐतराज ये नहीं था कि पश्चिम ने तरक्की कर ली। उनका ऐतराज इस बात पर था कि ये जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये अपनी सारी चमक दमक के बावजूद इंसान को अंदर से, मतलब आध्यात्मिक और नैतिक रूप से कमजोर बना रही है।
कैसे?
गांधी का मानना था कि ये सभ्यता साधनों को साध्य से ऊपर रखती है। मतलब पैसा कमाना, आरामदेह जीवन जीना, ये सब साधन है। साध्य होना चाहिए नैतिक जीवन, आध्यात्मिक विकास।
बिल्कुल।
लेकिन आधुनिक सभ्यता में ये उलट गया है। बाहरी चीजों पर, भौतिक सुख पर इतना जोर है कि इंसान का अंदरूनी विकास पीछे छूट जाता है।
और ये अंतहीन इच्छाएं पैदा करती है।
बिल्कुल, ये ऐसी जरूरतें पैदा करती हैं जिनका कोई अंत नहीं, और इंसान बस उन्हीं के पीछे भागता रहता है, एक तरह से अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है।
उन्होंने तो आधुनिक संस्थाओं पर भी बड़े कड़े सवाल उठाए थे, संसद को लेकर या मॉडर्न मेडिसिन को लेकर।
हाँ, ब्रिटिश संसद को बांझ औरत या वेश्या कह देना, सोचिए कितना रेडिकल रहा होगा ये उस वक्त। उनका मानना था कि ये बस पार्टी पॉलिटिक्स और सत्ता का खेल बनकर रह गई है, आम आदमी की भलाई या नैतिकता से इसका रिश्ता कमजोर है।
और मेडिसिन पर?
उनका कहना था कि यह सिर्फ लक्षणों को दबाती है, बीमारी की जड़ तक नहीं जाती। और औद्योगिकरण, पारेख यहां स्पष्ट करते हैं कि गांधी मशीनों के दुश्मन नहीं थे, जैसा बहुत लोग मान लेते हैं।
हाँ, ये एक आम गलतफहमी है।
गांधी उस पागलपन के खिलाफ थे जहां मशीनें इंसान पर हावी हो जाएं, उसे अपना गुलाम बना लें, बेरोजगारी फैलाएं, और सबसे बड़ी बात, काम की जो गरिमा है उसे छीन ले। जब काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन जाए, उसमें कोई संतुष्टि न रहे।
तो फिर गांधी के लिए असली सभ्यता, सच्ची सिविलाइजेशन क्या थी?
पारेख के अनुसार गांधी के लिए सच्ची सभ्यता बाहरी तरक्की, बिल्डिंगें मिलाने या हथियार जमा करने में नहीं थी, वो थी अंदरूनी विकास में, नैतिक और आध्यात्मिक आत्मनियंत्रण में, अपनी इच्छाओं को सीमित करना, सादा जीवन जीना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, ये अंदर से मजबूत होने की बात थी।
और इसी अंदरूनी मजबूती से बाहरी अन्याय का सामना करने का हथियार था सत्याग्रह। पारे कहते हैं ये गांधी का दुनिया को शायद सबसे मौलिक योगदान है।
बिल्कुल, सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य पर टिके रहना, सत्य की शक्ति। इसे अक्सर पैसिव रेजिस्टेंस कह दिया जाता है, लेकिन पारेख कहते हैं ये पैसिव बिल्कुल नहीं है, ये बहुत एक्टिव है। ये एक आध्यात्मिक रूप से अनुशासित सत्य शक्ति है, सोल फोर्स जिसे गांधी कहते थे।
और इसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पारेख इस पर बहुत जोर देते हैं। सत्याग्रह का लक्ष्य था खुद कष्ट सहकर, प्रेम और संवाद के जरिए सामने वाले की अंतरात्मा को जगाना, उसे उसकी गलती का एहसास कराना। ये रिश्ते को बदलने की कोशिश थी, कॉन्फ्लिक्ट को ट्रांसफॉर्म करने की। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था।
इसके तरीके भी तो बड़े अनूठे थे, याचिका देना, बातचीत, मार्च, बहिष्कार।
हाँ, सविनय अवज्ञा, यानी अन्यायपूर्ण कानून को मानने से इनकार करना, और जरूरत पड़ने पर उपवास। लेकिन ये सब करते हुए सत्याग्रही को जो अनुशासन रखना होता था वो कमाल का था।
क्या अनुशासन थे वो?
मन, वचन और कर्म तीनों से पूरी तरह अहिंसा, निडरता, आत्मसंयम और बिना किसी बदले की भावना के स्वेच्छा से दुख सहने की तैयारी। पारेख साफ कहते हैं ये कमजोरों का हथियार नहीं था, ये नैतिक रूप से बहुत शक्तिशाली लोगों का शस्त्र था।
तो गांधी जिस समाज का सपना देख रहे थे, जो अहिंसा पर आधारित हो, वो दिखता कैसा? पारेख उसके क्या मुख्य स्तंभ बताते हैं?
उसकी नींव में कुछ बड़े आइडियाज थे। पहला और सबसे अहम था स्वराज। लेकिन स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
व्यक्ति के स्तर पर स्वराज का मतलब था खुद पर शासन, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता। और राजनीतिक स्तर पर इसका मतलब था डिसेंट्रलाइज्ड पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी ग्राम स्वराज। असली शक्ति गांवों के हाथ में हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाए, ना कि ऊपर से नीचे।
और इसी से जुड़ा था स्वदेशी का विचार।
हाँ हाँ, स्वदेशी एक तरह से स्वराज का आर्थिक पहलू था। अपनी जरूरतें अपने आसपास के संसाधनों से पूरी करना, लोकल चीजें बनाना, इस्तेमाल करना, जैसे खादी। पारेख समझाते हैं कि ये सिर्फ विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था।
अच्छा।
स्वदेशी से आत्मसम्मान बढ़ता था, लोगों को रोजगार मिलता था, और ये लोगों में अनुशासन और स्वतंत्रता का भाव जगाता था। तो ये एक आर्थिक नीति होने के साथ साथ एक राजनीतिक और आध्यात्मिक टूल भी था।
फिर एक और शब्द आता है, सर्वोदय। इसका क्या मतलब था?
सर्वोदय यानी सबका उदय, सबकी भलाई। ये विचार गांधी ने जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से लिया था। ये उस यूटिलिटेरियन सोच को चुनौती देता है जो कहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला।
तो सर्वोदय क्या कहता है?
सर्वोदय कहता है कि समाज की प्रगति का पैमाना ये होना चाहिए कि जो सबसे कमजोर है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उसका भला हो रहा है या नहीं। सबसे कमजोर का कल्याण सबसे पहले।
और अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत।
जी, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष से बचने के लिए गांधी ने ये रास्ता सुझाया कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है, वो उसे अपनी निजी मिल्कियत ना समझें।
तो क्या समझें?
वो उसे समाज की धरोहर समझें, जिसके वो सिर्फ ट्रस्टी यानी रखवाले हैं। उन्हें उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पारेख मानते हैं कि ये गांधी के सबसे आदर्शवादी विचारों में से एक था, शायद लागू करने में भी सबसे मुश्किल, पर ये उनकी नैतिकता पर आधारित सोच का ही नतीजा था।
और धर्म और नैतिकता राजनीति में उनका क्या स्थान था गांधी के लिए?
पारेख दिखाते हैं कि गांधी के लिए ये अलग हो ही नहीं सकते थे। राजनीति और नैतिकता जुड़े हुए थे। उनका वो प्रसिद्ध कथन है, सत्य ही ईश्वर है।
हाँ, ये बहुत गहरा है।
इसका मतलब है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं ऊपर बैठा है, बल्कि सत्य, ट्रूथ ही अल्टीमेट रियलिटी है। ईश्वर को खोजना मतलब सत्य को खोजना, इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग कहा।
और क्योंकि हम पूरा सत्य नहीं जान सकते।
बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान कभी पूर्ण सत्य नहीं जान सकते, इसलिए हमें अपने जाने हुए, अपने अनुभव किए हुए सत्य पर टिके रहना चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरों के सत्य के प्रति भी खुलापन रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। वही अनेकांतवाद वाली बात फिर से आ जाती है।
और सत्य तक पहुंचने का रास्ता
सिर्फ और सिर्फ एक अहिंसा। पारेख इस पर बहुत जोर देते हैं कि गांधी की अहिंसा सिर्फ किसी को मारना नहीं या हिंसा ना करना नहीं थी, वो एक एक्टिव पॉजिटिव फोर्स थी। प्रेम की, करुणा की, आत्मपीड़ा सहने की शक्ति, ये अन्याय का सामना भी करती थी और दिलों को बदलने की क्षमता भी रखती थी।
इसी से जुड़ा था वो साधन और साध्य की एकता वाला सिद्धांत, है ना?
एकदम। मीन्स एंड एंड्स मस्ट कोहियर, यानी जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। आप गलत तरीकों से सही मकसद हासिल नहीं कर सकते। अगर लक्ष्य पवित्र है तो रास्ते भी पवित्र होने चाहिए। आप हिंसा करके शांति स्थापित नहीं कर सकते। बेईमानी से मिली जीत सच्ची जीत नहीं होगी।
और इतने सारे धर्मों वाले देश के लिए उनका मंत्र था सर्वधर्म संभाव।
हाँ, सभी धर्मों का बराबर सम्मान। उनका मानना था कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी वही एक परम सत्य है। हर धर्म उसी तक पहुंचने का एक मार्ग दिखाता है। और असली धार्मिकता पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा में है, सामाजिक जिम्मेदारी में है।
तो अगर हम पारेख के विश्लेषण को देखें, तो गांधी के विचारों से निकलने वाले कुछ सबसे बड़े संदेश या थीम क्या है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे मौलिक है साधन और साध्य की अविभाज्यता। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं, हमें वैसे ही तरीके आज अभी अपनाने होंगे। ये बात पारंपरिक राजनीति सोच, जो कहती है कि मकसद हासिल करने के लिए कोई भी तरीका जायज है, उसको सीधी चुनौती देती है।
हाँ, आज की राजनीति में तो ये बात जैसे भुलाई दी गई है।
दूसरा, परंपरा और आधुनिकता का वो संगम। गांधी ने ना तो आंख मूंदकर पश्चिम को अपनाया, ना ही अतीत की हर चीज को सही माना। पारेख दिखाते हैं कि उन्होंने दोनों से सीखा, दोनों की सीमाओं को पहचाना और उनसे आगे जाने की कोशिश की। जैसे धर्म और अहिंसा जैसे पारंपरिक मूल्यों का इस्तेमाल किया, लेकिन अधिकारों और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से भी जुड़े और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया।
तीसरा, विकेंद्रीकरण का विचार। ग्राम स्वराज। आज के समय में जब सारी ताकत कुछ बड़े शहरों या राजधानियों में सिमटती जा रही है और आम इंसान को लगता है कि सिस्टम से उसका कोई जुड़ाव ही नहीं, तब गांधी का ये आइडिया कि असली शक्ति लोगों के हाथ में, उनके अपने समुदाय में होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है।
बिल्कुल। चौथा, राजनीति का अध्यात्मीकरण। गांधी के लिए पॉलिटिक्स कोई सत्ता का खेल नहीं थी, वो सेवा का, सत्य के प्रयोग का क्षेत्र थी, एक तरह की साधना। सच्ची राजनीति अंदर के बदलाव से शुरू होती है। आज की पावर पॉलिटिक्स से कितना अलग है ये नजरिया।
और पांचवां स्वराज पड़ा वो गहरा अर्थ जो सिर्फ देश की राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था।
वो व्यक्ति के आत्मनियंत्रण से शुरू होता था। अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना। परेख के मुताबिक गांधी के लिए सच्ची स्वतंत्रता एक नैतिक अवस्था थी। सिर्फ बाहरी बंधनों का टूटना काफी नहीं था।
पारेख गांधी के कुछ मशहूर कथनों के पीछे के गहरे अर्थों को भी उजागर करते हैं, जैसे वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है?
हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा कोट नहीं है। पारेख बताते हैं कि ये गांधी के पूरे दर्शन का निचोड़ है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सामाजिक बदलाव की शुरुआत व्यक्तिगत बदलाव से होती है। हम खुद अन्याय करते हुए न्यायपूर्ण समाज नहीं बना सकते, बदलाव अपने आप से शुरू करना होगा।
फिर सत्य ही ईश्वर है। पारेख कहते हैं कि ये गांधी की बहुत परिपक्व दार्शनिक समझ थी।
बिल्कुल, इससे ईश्वर किसी एक धर्म की बपौती नहीं रह जाता। वो सत्य का रूप ले लेता है जो यूनिवर्सल है, जो सबको जोड़ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों या ना मानते हों। एक सेक्युलर बहुधार्मिक समाज के लिए ये कितना जरूरी आधार बना।
और ये वाला, अहिंसा मानव जाति के पास सबसे बड़ी शक्ति है।
पारेख इस पर बहुत जोर देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि गांधी के लिए अहिंसा कोई मजबूरी या कमजोरी का नाम नहीं थी, वो हिंसा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बल थी, क्योंकि वो दिलों को जीत सकती थी, रिश्तों को बदल सकती थी, जो काम हथियार कभी नहीं कर सकते।
आज की दुनिया में ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना।
हाँ, पर गांधी का यही विश्वास था। और एक और, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना।
मतलब सेल्फ रियलाइजेशन एकांत में नहीं बल्कि एक्शन में है।
हाँ, समाज के लिए कुछ करने में है, अपनी मैं को मिटाकर दूसरों के काम आने में है। अध्यात्म और सामाजिक कर्म का ये अद्भुत मेल है गांधी के विचारों में।
और अंत में सत्याग्रह, सत्य बल। पारेख क्या याद दिलाते हैं इसके बारे में?
वो बार बार यही याद दिलाते हैं कि इसका मकसद विरोधी को जलील करना या हराना नहीं था, बल्कि खुद दुख उठाकर उसकी अंतरात्मा को जगाना था, ताकि रिश्ता सुधर सके। ये लड़ाई को एक नैतिक ऊंचाई पर ले जाता है।
ये सारे विचार सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक हैं, क्रांतिकारी भी लगते हैं, लेकिन फिर वही सवाल आता है, क्या आज की दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है? पारेख का विश्लेषण हमें क्या दिशा दे सकता है?
हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और मुझे लगता है बिल्कुल है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो गांधी की सोच हमें सचेत उपभोग, मतलब कॉन्शियस कंजम्पशन की तरफ ले जाती है। क्या हमें वाकई हर नई चीज की जरूरत है? क्या हम अपनी इच्छाओं पर थोड़ी लगाम लगा सकते हैं? रिश्तों में जब कोई झगड़ा या मनमुटाव हो तो गांधी का तरीका क्या था? सामने वाले को ध्यान से सुनना, उसकी बात समझने की कोशिश करना, सहानुभूति रखना, ये आज भी उतना ही कारगर है।
और आत्मानुशासन, चाहे वो डिजिटल डिटॉक्स हो या मेडिटेशन, ये गांधी के इनर स्वराज का ही तो हिस्सा है।
और काम की जगह पर, लीडरशिप में।
बिल्कुल,
लीडर वो जो खुद उदाहरण पेश करें, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। फैसले लेते वक्त ये सोचना कि क्या तरीका नैतिक रूप से सही है, सिर्फ नतीजे पर ध्यान ना देना। कंपनी या संस्था की सफलता में सबका योगदान समझना, उसे सिर्फ अपनी कमाई ना मानना, वो ट्रस्टीशिप वाली भावना।
हाँ, और हर काम करने वाले का सम्मान करना।
बिल्कुल, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, श्रम की गरिमा, ये सब गांधीवादी सिद्धांत हैं जिन्हें आज भी अपनाया जा सकता है।
सामाजिक बदलाव के लिए तो गांधी आज भी प्रेरणा है ही।
बेशक, दुनिया भर में कितने ही अहिंसक आंदोलन उनसे प्रेरणा लेते हैं। और गांधी का जोर सिर्फ विरोध पर नहीं था, वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यानी रचनात्मक कार्य पर भी उतना ही जोर देते थे कि हम सिर्फ बुराई का विरोध न करें, बल्कि साथ साथ कुछ अच्छा, कुछ नया भी बनाएं। और बदलाव की शुरुआत हमेशा जमीनी स्तर से हो, ग्रास रूट एम्पावरमेंट।
और आजकल जो इतना धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव दिखता है, उसमें गांधी की क्या प्रासंगिकता है?
गांधी का सर्वधर्म संभाव, अपनी आस्था पर अडिग रहते हुए भी दूसरों की आस्था का दिल से सम्मान करना, नफरत की जगह संवाद और साझा आधार खोजने की कोशिश करना, आज के माहौल में इसकी जितनी जरूरत है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी।
तो कुल मिलाकर पारेख हमें गांधी को एक नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। वो सिर्फ इतिहास की एक मूर्ति नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे व्यवस्थित दार्शनिक आधुनिकता के आलोचक हैं जिनके सवाल, जिनके विचार आज भी जिंदा हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। उनका दर्शन नैतिकता, आध्यात्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति सबको एक साथ जोड़ता है।
और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्ची आज़ादी यानी स्वराज वो अंदर से शुरू होती है, खुद पर शासन करने से। और हमारे तरीकों की नैतिकता ही हमारे नतीजों की नैतिकता तय करती है।
हाँ, और गांधी ने जिस तरह भौतिकवाद के अंधे दौड़ और सत्ता के केंद्रीकरण के खतरों के बारे में चेताया था, वो आज के पर्यावरण संकट, मेंटल हेल्थ के मुद्दों, सामाजिक बिखराव को देखते हुए कितना दूरदर्शी लगता है।
वाकई भीखू पारेख का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने गांधी को संत की छवि से निकालकर एक मौलिक रेडिकल विचारक के रूप में हमारे सामने रखा है, जिनके विचार हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल।
और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पारेख ने दिखाया कि गांधी ने औद्योगिक युग की मशीनी सभ्यता की आलोचना की। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, स्क्रीन से चिपके हुए, वर्चुअल दुनिया में खोए हुए, सूचनाओं की बाढ़ में डूबे हुए। तो गांधी की वो आलोचना आज के इस दौर पर कितनी लागू होती है? क्या हमारी ये तथाकथित कनेक्टेड दुनिया हमें सच में ज्यादा मानवीय, ज्यादा नैतिक बना रही है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।